एकत्र ज्ञान गोष्ठी आज के जरूरी विचारों का सार अब अपनी भाषा में। ये ऑडियो सारांश एकत्र एआई की मदद से तैयार किया गया है। ज्ञान गोष्ठी में आपका स्वागत है।
नमस्कार। आज हम एक ऐसे विषय पर थोड़ी गहराई से बात करेंगे जो आजकल बहुत चर्चा में रहता है।
हाँ, मतलब खबरों में तो रोज ही कुछ ना कुछ होता है।
बिल्कुल, अंतर्राष्ट्रीय प्रवासन, यानी लोगों का एक देश से दूसरे देश जाना।
और इसके लिए हम खालिद कौसर की दो किताबों को आधार बना रहे हैं, इंटरनेशनल माइग्रेशन एनालिसिस एंड गवर्नेंस और इंटरनेशनल माइग्रेशन अ वेरी शॉर्ट इंट्रोडक्शन।
हाँ, ये दोनों ही किताबें इस जटिल विषय को समझने में काफी मदद करती हैं।
वैसे एक आम धारणा है ना कि ज्यादातर लोग गरीब देशों से निकलकर अमीर देशों की तरफ जाते हैं।
हाँ, ये काफी कॉमन सोच है, लेकिन कौसर एक चौंकाने वाली बात बताते हैं।
क्या?
कि असल में ज्यादातर अंतर्राष्ट्रीय प्रवासी एक विकासशील देश से दूसरे विकासशील देश ही जाते हैं।
अरे, ये तो बिल्कुल अलग बात है।
हाँ, है ना, ये हमारी आम समझ को चैलेंज करती है और दिखाती है कि ये मुद्दा कितना पेचीदा है।
सही कहा। और वैश्वीकरण के इस दौर में तो इसका असर हर जगह है, राजनीति, अर्थव्यवस्था, समाज।
बिल्कुल, और बहसें अक्सर बहुत गर्म होती हैं, पर समझ वो कई बार या तो अधूरी होती है या फिर मतलब किसी एक तरफ झुकी हुई।
इसलिए आज हम खालिद कौसर के नजरिए से इसे समझने की कोशिश करेंगे। तो कौसर की खासियत क्या है? वो सिर्फ एक प्रोफेसर तो नहीं है?
नहीं, बिल्कुल नहीं। खालिद कौसर की खासियत यही है कि वो दुनिया के उन गिने चुने एक्सपर्ट्स में हैं जिन्हें प्रवासन, शरणार्थी मुद्दे, सुरक्षा, इन सब तक गहरी अकेडमिक पकड़ भी है और साथ ही जमीनी स्तर पर नीति निर्माण का, पॉलिसी मेकिंग का अनुभव भी।
अच्छा, जैसे?
उन्होंने बड़े विश्वविद्यालयों में पढ़ाया है, जैसे यूनिवर्सिटी कॉलेज लंदन, जॉर्ज वॉशिंगटन यूनिवर्सिटी, लेकिन साथ ही ग्लोबल कम्युनिटी एंगेजमेंट एंड रिजिलियंस फंड GCERF जैसे अहम संगठनों को लीड भी किया है।
ओह।
और तो और, वो UN, यूरोपियन यूनियन कई सरकारों के सलाहकार भी रहे।
तो मतलब थियरी और प्रैक्टिकल दोनों का अनुभव है।
एग्जैक्टली। और उनका जो वैश्विक अनुभव है अलग अलग देशों में काम करने का,
हाँ,
उससे वो इस मुद्दे को सिर्फ किताबी या किसी एक देश के नजरिए से नहीं, बल्कि सही मायनों में एक अंतर्राष्ट्रीय परिप्रेक्ष्य से देख पाते हैं।
शायद इसीलिए वो मुश्किल आइडियाज को भी आम लोगों के लिए आसान बना पाते हैं।
बिल्कुल, उनकी किताबें सिर्फ एक्सपर्ट्स के लिए नहीं है, स्टूडेंट्स, पॉलिसी मेकर्स, पत्रकार या कोई भी आम इंसान जो इस मुद्दे को भावनाओं या राजनीतिक नारों से हटकर समझना चाहे,
तथ्यों के आधार पर,
हाँ, सबूतों और विश्लेषण के आधार पर, उनके लिए ये बहुत उपयोगी है। कौसर का जो मुख्य तर्क है ना, वो ये है कि प्रवासन कोई ऐसी समस्या नहीं है जिसे हम हल करके खत्म कर दें।
अच्छा, तो फिर क्या है?
वो कहते हैं कि ये मानव समाज का और वैश्वीकरण का एक सामान्य और स्थायी हिस्सा है, एक हकीकत है
जिसे रोका नहीं जा सकता।
जिसे रोकने की कोशिश करने के बजाय हमें उसे बेहतर ढंग से मैनेज करने की जरूरत है।
मतलब मानवीय तरीके से और सबूतों के आधार पर।
बिल्कुल, उनकी किताबें हमें यही समझ और नजरिया देती हैं और कई आम मिथकों को भी तोड़ती हैं।
चलिए, तो फिर इस प्रबंधन की परतों को खोलते हैं। शुरुआत कहाँ से करें? ये जो अलग अलग शब्द होते हैं, प्रवासी, शरणार्थी, शरण चाहने वाले, इनमें क्या फर्क है और क्या ये फर्क जानना जरूरी है?
हाँ, देखिए, कानूनी तौर पर ये फर्क बहुत जरूरी है, बहुत महत्वपूर्ण, क्योंकि इसी से लोगों के अधिकार तय होते हैं और देशों की जिम्मेदारियां भी।
अच्छा,
अंतर्राष्ट्रीय प्रवासी तो एक बहुत मतलब ब्रॉड टर्म है, कोई भी जो अपना देश छोड़कर दूसरे देश में रह रहा है।
ठीक है।
लेकिन शरणार्थी यानी रेफ्यूजी वो व्यक्ति है जिसे अपने देश में उत्पीड़न, युद्ध या हिंसा का गंभीर खतरा था और इस वजह से उसे देश छोड़ना पड़ा। अंतर्राष्ट्रीय कानून उन्हें सुरक्षा देता है।
और शरण चाहने वाला, असाइलम सीकर,
वो व्यक्ति जिसने शरण के लिए आवेदन किया है पर अभी उसकी अर्जी पर फैसला होना बाकी है।
और एक और शब्द सुना है, IDP?
हाँ, इंटरनली डिस्प्लेस्ड पर्सन, यानी आंतरिक रूप से विस्थापित व्यक्ति। ये वो लोग हैं जो अपने ही देश के अंदर अपनी सीमा के भीतर विस्थापित हुए हैं, देश छोड़कर नहीं गए।
लेकिन असल जिंदगी में क्या ये बंटवारा इतना साफ होता है? मतलब कोई सिर्फ आर्थिक तंगी की वजह से देश छोड़ता है या हो सकता है कि वहाँ असुरक्षा भी हो?
बहुत अच्छा सवाल है और कौसर इसी जटिलता पर बहुत जोर देते हैं। वो मिश्रित प्रवासन धाराओं यानी मिक्स्ड माइग्रेशन फ्लोज की बात करते हैं।
मिश्रित धाराएं?
हाँ, मतलब ऐसी स्थितियां जहां लोगों के जाने के पीछे कई कारण मिले जुले होते हैं, आर्थिक भी, सामाजिक भी, सुरक्षा से जुड़े हुए।
तो ये कानूनी कैटेगरीज पूरी कहानी नहीं बता दी?
बिल्कुल, कानूनी श्रेणियां जरूरी हैं, इसमें कोई शक नहीं, लेकिन वो हमेशा किसी इंसान की पूरी कहानी उसकी मजबूरियों, उसकी प्रेरणाओं को कैप्चर नहीं कर पाती, और इसीलिए नीतियां बनाते वक्त इस मानवीय पहलू और जटिलता को समझना बहुत जरूरी है।
ठीक है, तो अब आते हैं कारणों पर। लोग आखिर अपना घर, अपना देश छोड़ते ही क्यों हैं? क्या ये सिर्फ बेहतर जिंदगी की तलाश होती है?
ये एक बहुत आम धारणा है, लेकिन कोसर कहते हैं कि हमें इससे आगे देखना होगा। कारण कई होते हैं, हम उन्हें पुश फैक्टर्स और पुल फैक्टर्स में बांट सकते हैं।
पुश और पुल मतलब?
पुश फैक्टर्स वो हैं जो लोगों को उनका देश छोड़ने पर धकेलते हैं, जैसे गरीबी, बेरोजगारी, लड़ाई झगड़ा, जुल्म या फिर आजकल जलवायु परिवर्तन से होने वाली तबाही।
और पुल फैक्टर्स?
पुल फैक्टर्स वो हैं जो लोगों को किसी दूसरे देश की तरफ खींचते हैं, जैसे वहाँ बेहतर नौकरियों के अवसर, ज्यादा सुरक्षा, अच्छी शिक्षा या फिर परिवार या दोस्त जो पहले से वहाँ रह रहे हों।
ठीक, गणित नहीं होता होगा?
नहीं, बिल्कुल नहीं। कौसर एक और कॉन्सेप्ट देते हैं, उत्तरजीविता प्रवासन या सर्वाइवल माइग्रेशन।
सर्वाइवल माइग्रेशन,
हाँ, यानी जब लोग सिर्फ अपना जीवन स्तर सुधारने के लिए नहीं, बल्कि सचमुच अपना जीवन बचाने के लिए, अपने अस्तित्व के लिए पलायन करते हैं।
ओ।
और आजकल इसमें वैश्वीकरण का बहुत बड़ा हाथ है। टेक्नोलॉजी का भी, सस्ता इंटरनेट, मोबाइल फोन,
जानकारी आसानी से मिल जाती है।
हाँ, जानकारी मिलना, संपर्क बनाना, यहाँ तक कि यात्रा करना भी पहले से आसान हुआ है। और सोशल नेटवर्क यानी परिवार, दोस्त, इनकी भूमिका भी बहुत बढ़ गई है। इससे चेन माइग्रेशन भी होता है।
चेन माइग्रेशन मतलब एक के पीछे एक लोग जाते हैं?
बिल्कुल, एक जाता है फिर दूसरों को बुलाता है या उनके लिए रास्ता बनाता है।
आपने वैश्वीकरण की बात की, कौसर इस पर काफी जोर देते हैं ना, कि प्रवासन और वैश्वीकरण अलग नहीं है।
हाँ, उनका ये एक मुख्य बिंदु है। वो कहते हैं कि प्रवासन वैश्वीकरण का एक जरूरी हिस्सा है, कोई अलग थलग घटना नहीं।
कैसे?
वो तर्क देते हैं कि वही ताकत जो सामान, पैसा और सूचना को दुनिया भर में आसानी से घूमने में मदद करती हैं, जैसे सस्ती हवाई यात्रा, आसान कम्युनिकेशन, वही ताकतें लोगों की आवाजाही को भी बढ़ाती हैं।
तो प्रवासन वैश्वीकरण का नतीजा भी है और उसे चलाता भी है।
एग्जैक्टली, लेकिन यहाँ एक मजेदार विरोधाभास है।
क्या?
कई देश और कंपनियां सामान और पूंजी की खुली आवाजाही के तो पक्ष में हैं।
हाँ, फ्री ट्रेड।
बिल्कुल, लेकिन जब लोगों की आवाजाही की बात आती है तो सीमाएं सख्त करना चाहते हैं, रोक लगाना चाहते हैं।
बात तो सही है, ये दोहरापन क्यों?
कोसर हमें इसी पर सोचने को कहते हैं। अगर हम वैश्वीकरण के फायदे चाहते हैं तो हमें उसके सभी पहलुओं को समझना होगा, जिसमें लोगों का आना जाना भी शामिल है।
तो अब सवाल ये उठता है कि इस आने जाने का असर क्या होता है, कहाँ होता है, कैसे होता है?
बिल्कुल, पहले बात करते हैं उन देशों की जहाँ से लोग जाते हैं, यानी मूल देश या सेंडिंग कंट्रीज।
भारत जैसे देशों के लिए तो ये बहुत अहम सवाल है।
हाँ, एक बड़ा सकारात्मक पहलू है रेमिटेंस।
रेमिटेंस यानी बाहर से भेजा गया पैसा।
हाँ, विदेशों में काम कर रहे लोग जो पैसा अपने घर भेजते हैं। कई विकासशील देशों के लिए तो ये विदेशी मदद से भी बड़ा आय का स्रोत है।
और इसका फायदा क्या होता है?
ये पैसा सीधे परिवारों के पास जाता है, इससे गरीबी कम होती है, बच्चे पढ़ पाते हैं, स्वास्थ्य सुधरता है, और ये पैसा स्थानीय बाजार में खर्च होता है तो लोकल इकोनॉमी को भी बूस्ट मिलता है।
लेकिन एक चिंता भी तो रहती है, ब्रेन ड्रेन की।
हाँ, ये सिक्के का दूसरा पहलू है
कि हमारे जो सबसे काबिल लोग हैं, डॉक्टर, इंजीनियर, वैज्ञानिक, वो बाहर चले जाते हैं, इससे देश का नुकसान नहीं होता?
ये चिंता बिल्कुल सही है। जब कुशल पढ़े लिखे लोग देश छोड़कर जाते हैं तो उसे प्रतिभा पलायन या ब्रेन ड्रेन कहते हैं। इससे देश के विकास में, खासकर स्वास्थ्य और शिक्षा जैसे जरूरी क्षेत्रों में, रुकावट आ सकती है।
और परिवारों का बिछड़ना भी तो एक कीमत है।
बिल्कुल, वो एक सामाजिक और भावनात्मक पहलू है जिसकी हम अक्सर अनदेखी कर देते हैं, तो असर मिला जुला होता है।
अच्छा, अब बात करते हैं उन देशों की जहाँ लोग जाते हैं, गंतव्य देश या रिसीविंग कंट्रीज। वहाँ अक्सर ये डर जताया जाता है कि प्रवासी नौकरियां छीन लेते हैं।
हाँ।
या सरकारी सुविधाओं पर बोझ बन जाते हैं। इसमें कितनी सच्चाई है?
देखिए, ये चिंताएं काफी आम हैं, लेकिन कौसर हमें सबूत देखने को कहते हैं। आर्थिक नजरिए से देखें तो प्रवासी अक्सर वो काम करते हैं जिन्हें या तो स्थानीय लोग करना नहीं चाहते या जिनके लिए वहाँ पर्याप्त कुशल लोग नहीं हैं।
जैसे
ये खेती बाड़ी से लेकर कंस्ट्रक्शन, केयर वर्क, और यहाँ तक कि हाईटेक इंडस्ट्री तक कुछ भी हो सकता है। वो नए आइडियाज लाते हैं, कई बार अपना कारोबार शुरू करते हैं,
उद्यमी होते हैं।
बिल्कुल, और वो टैक्स भी देते हैं। कई पश्चिमी देशों में जहाँ आबादी बूढ़ी हो रही है, वहाँ तो अर्थव्यवस्था चलाने के लिए प्रवासी मजदूरों की जरूरत है।
लेकिन क्या इससे मतलब जो कम पढ़े लिखे स्थानीय मजदूर हैं उनकी तनख्वाह पर बुरा असर नहीं पड़ता या स्कूलों अस्पतालों पर दबाव नहीं पड़ता?
शोध ये बताते हैं कि निम्न कुशल क्षेत्र में मजदूरी पर थोड़ा बहुत मामूली असर पड़ सकता है, पर ओवरऑल अर्थव्यवस्था पर प्रवासियों का असर ज्यादातर सकारात्मक ही होता है।
और सामाजिक सेवाओं पर दबाव?
दबाव पड़ सकता है हाँ, लेकिन ये सही प्लानिंग और निवेश से संभाला जा सकता है। असल चुनौती अक्सर सामाजिक और सांस्कृतिक तालमेल बिठाने की होती है, जिसे हम एकीकरण कहते हैं। लेकिन जो नकारात्मक असर की बातें होती है ना, उनके सबूत अक्सर उतने पक्के नहीं होते जितना राजनीतिक बहसों में बताया जाता है।
एक और बहुत संवेदनशील मुद्दा है अनियमित प्रवासन का, जिसे आमतौर पर अवैध या गैर कानूनी कह दिया जाता है। कोसर अनियमित शब्द क्यों इस्तेमाल करते हैं?
ये एक महत्वपूर्ण अंतर है। अवैध या गैर कानूनी जैसे शब्द व्यक्ति को ही अपराधी जैसा बना देते हैं, जबकि अनियमित इरेगुलर शब्द सिर्फ ये बताता है कि उस व्यक्ति ने देश में आने या रहने की जो तय कानूनी प्रक्रिया है उसका पालन नहीं किया है।
और ऐसा क्यों होता है?
अक्सर इसलिए कि या तो कानूनी रास्ते होते ही नहीं हैं, या फिर वो इतने मुश्किल इतने महंगे होते हैं कि लोग उनका इस्तेमाल नहीं कर पाते। तो अनियमित शब्द स्थिति पर जोर देता है, व्यक्ति के चरित्र पर नहीं।
समझ गया। और इसके तरीके क्या होते हैं और खतरे?
तरीकों में जैसे वीजा खत्म होने के बाद भी रुक जाना, जाली दस्तावेजों का इस्तेमाल करना, या फिर बहुत खतरनाक रास्तों से जैसे रेगिस्तान पार करके या नावों में समंदर पार करके सीमा पार करना शामिल है।
इसमें तस्करों का भी रोल होता है?
हाँ, मानव तस्कर होते हैं जो पैसे लेकर लोगों को सीमा पार करवाते हैं। इसे मानव व्यापार से अलग समझना चाहिए। ट्रैफिकिंग में तो लोगों को धोखे से या जबरदस्ती शोषण के लिए ले जाया जाता है।
और अनियमित प्रवासियों के लिए खतरे क्या हैं?
बहुत ज्यादा। पकड़े जाने का डर, शोषण का खतरा, खराब हालातों में काम करना और कई बार तो यात्रा में ही जान जाने का खतरा रहता है। ये बहुत ही असुरक्षित स्थिति होती है।
वाकई बहुत गंभीर है। अच्छा, अब उन लोगों की बात करते हैं जो सुरक्षा की तलाश में अपना देश छोड़ते हैं, शरणार्थी। उनके लिए क्या कोई अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था है?
हाँ बिल्कुल है। इसका आधार है 1951 का शरणार्थी कन्वेंशन।
1951 कन्वेंशन?
हाँ, ये एक अंतर्राष्ट्रीय संधि है जो बताती है कि शरणार्थी कौन है, और ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण सिद्धांत स्थापित करती है, नॉन रिफाउलमेंट।
नॉन रिफाउलमेंट ये क्या है?
इसका मतलब है कि कोई भी देश किसी व्यक्ति को जबरदस्ती ऐसी जगह वापस नहीं भेज सकता जहां उसकी जान, आजादी या सुरक्षा को गंभीर खतरा हो। ये शरणार्थी कानून का मूल सिद्धांत है।
लेकिन आजकल तो हम सुनते हैं कि शरणार्थी व्यवस्था पर बहुत दबाव है और कई देश काफी सख्त हो रहे हैं।
हाँ, ये बिल्कुल सच है। युद्ध, हिंसा, उत्पीड़न की वजह से दुनिया भर में विस्थापित लोगों की संख्या रिकॉर्ड तोड़ चुकी है, और ज्यादातर शरणार्थी कहाँ शरण लेते हैं?
कहाँ?
अपने पड़ोसी देशों में, जो अक्सर खुद विकासशील देश होते हैं और जिनके पास संसाधन पहले ही कम होते हैं।
और अमीर देश?
दूसरी तरफ कई अमीर देश अपनी सीमाएं बंद कर रहे हैं, दीवारें बना रहे हैं, शरण के नियम सख्त कर रहे हैं। कुछ तो शरण अर्जियों को अपने देश के बाहर ही प्रोसेस करने की कोशिश कर रहे हैं। शरण पाने की जो प्रक्रिया है वो भी अक्सर बहुत लंबी, जटिल और अनिश्चित होती है।
तो जब कोई प्रवासी या शरणार्थी किसी नए देश में पहुंच जाता है तो वहां बसना, उस समाज का हिस्सा बनना, ये भी एक बड़ी चुनौती होगी। इसे एकीकरण कहते हैं ना?
हाँ, एकीकरण। और कॉन्सर्टेंस इस पर बहुत जोर देते हैं कि ये एक टू वे प्रोसेस है,
दो तरफा प्रक्रिया।
मतलब इसमें सिर्फ आने वाले व्यक्ति की ही जिम्मेदारी नहीं है कि वो बदले, बल्कि मेजबान समाज यानी होस्ट सोसाइटी को भी कोशिश करनी पड़ती है, उसे अपनाना पड़ता है।
अच्छा।
कुछ देश चाहते हैं कि प्रवासी अपनी पुरानी पहचान वगैरह छोड़कर पूरी तरह उन्हीं में मिल जाएं, इसे एसिमिलेशन कहते हैं। जबकि कुछ देश मल्टीकल्चरलिज्म यानी बहुसंस्कृतिवाद को अपनाते हैं, जहां लोग अपनी सांस्कृतिक पहचान बनाए रख सकते हैं।
और इसमें मुश्किलें क्या आती हैं?
मुश्किलें कई हैं। भाषा की रुकावट सबसे आम है, फिर रहने की जगह और नौकरी ढूंढने में भेदभाव, विदेशियों के प्रति नफरत या डर जिसे ज़ीनोफोबिया कहते हैं, नस्लवाद भी एक बड़ी समस्या है, और कई बार राष्ट्रीय पहचान को लेकर भी बहसें छिड़ जाती हैं।
तो सफल एकीकरण के लिए क्या जरूरी है?
जरूरी है अच्छी शिक्षा और भाषा सिखाने के कार्यक्रम, बाहर से मिली डिग्रियों और स्किल्स को मान्यता देना, भेदभाव के खिलाफ सख्त कानून और उनका पालन, और सबसे बढ़कर मेजबान समाज का रवैया खुला और स्वागत करने वाला होना चाहिए।
आखिर में कौशल प्रवासन के शासन यानी गवर्नेंस और भविष्य की भी बात करते हैं। गवर्नेंस का क्या मतलब है?
गवर्नेंस का मतलब है प्रवासन को मैनेज करने के नियम, कानून, नीतियां और संस्थाएं। और ये एक बहुत ही मतलब उलझावा मामला है।
कैसे?
क्योंकि इसमें अंतर्राष्ट्रीय संधियां भी हैं, जैसे शरणार्थी कन्वेंशन, और फिर हर देश के अपने अलग कानून और नीतियां भी हैं। खासकर जो आर्थिक कारणों से प्रवासन होता है उसको लेकर कोई एक ग्लोबल नियम व्यवस्था नहीं है, काफी गैप्स है।
तो फिर इसका हल क्या है? क्या भविष्य में ये और जटिल होगा?
हल तो सहयोग में ही है। देशों के बीच आपसी समझौते, क्षेत्रीय स्तर पर सहयोग, अंतर्राष्ट्रीय बातचीत। अक्सर होता ये है कि देशों के अपनी संप्रभुता और उनके जो मानवीय दायित्व हैं उनमें टकराव होता है।
और भविष्य?
भविष्य में कई चीजें इसे और पेचीदा बना सकती हैं, जैसे अमीर देशों में आबादी का बूढ़ा होना, जिससे काम करने वालों की जरूरत पड़ेगी। जलवायु परिवर्तन एक बहुत बड़ा फैक्टर होगा।
क्लाइमेट रेफ्यूजी?
हाँ, ये शब्द अब इस्तेमाल होने लगा है। हालांकि कानूनी तौर पर ये कैटेगरी अभी नहीं है, पर जलवायु परिवर्तन से विस्थापन बढ़ेगा ये तय है। फिर दुनिया में राजनीतिक अस्थिरता और टेक्नोलॉजी का असर भी होगा।
तो कोसर का निष्कर्ष क्या है?
उनका निष्कर्ष यही है कि हमें बेहतर डेटा चाहिए, बेहतर समझ चाहिए और अंतर्राष्ट्रीय सहयोग चाहिए, ताकि हम ज्यादा असरदार मानवीय और टिकाऊ प्रवासन नीतियां बना सकें।
इस पूरी बातचीत से कुछ मुख्य बातें तो साफ उभर कर आई हैं। पहली, जो आपने शुरू में भी कही थी, कि प्रवासन को एक संकट की तरह देखना बंद करना होगा। ये मानव इतिहास का हिस्सा रहा है और रहेगा।
बिल्कुल, इसे मैनेज करने की जरूरत है, रोकने की नहीं।
दूसरी बात, ये जो कानूनी कैटेगरीज हैं वो जरूरी हैं, पर जमीनी हकीकत अक्सर ज्यादा जटिल होती है। आर्थिक और शरणार्थी, स्वैच्छिक और मजबूर, ये रेखाएं कई बार धुंधली होती हैं।
हाँ, नीतियां बनाते वक्त इस मानवीय जटिलता को ध्यान में रखना ही होगा।
तीसरा, विकास और प्रवासन का रिश्ता सीधा नहीं है। मतलब ऐसा नहीं कि विकास होगा तो प्रवासन बंद हो जाएगा। भारत के लिए ये कितना सच है? यहाँ से लोग बाहर भी जाते हैं, रेमिटेंस भी भेजते हैं, पर ब्रेन ड्रेन भी होता है।
सही प्रबंधन हो तो ये दोनों के लिए फायदेमंद हो सकता है।
चौथा, और ये शायद सबसे जरूरी है, नीतियां भावनाओं या नारों पर नहीं, सबूतों और तथ्यों पर बननी चाहिए।
हाँ, कई आम धारणाएं, खासकर आर्थिक असर को लेकर, वो असल रिसर्च से मेल नहीं खाती। हमें पक्षपात से बचना होगा।
और आखिरी बात ये कि ये एक ग्लोबल मुद्दा है, कोई एक देश अकेले इसे नहीं संभाल सकता।
अंतर्राष्ट्रीय सहयोग, जिम्मेदारी का बंटवारा और एक साझा मानवीय नजरिए की जरूरत है। और हाँ, प्रवासियों को सिर्फ बेचारा या पीड़ित नहीं मानना चाहिए,
उन्हें सक्रियकर्ता, एजेंट्स के रूप में देखना चाहिए।
बिल्कुल, जो योगदान करते हैं अपने लिए भी और समाज के लिए भी।
कोर्सर की किताबों में कुछ ऐसी बातें हैं जो सोचने पर मजबूर करती हैं। कुछ कोर्ट से आइडियाज याद आ रहे हैं?
हाँ, कई है। एक तो यही कि प्रवासन हल करने की समस्या नहीं, बल्कि प्रबंधित करने की वास्तविकता है।
ये नजरिया ही बदल देता है, फोकस क्राइसिस से हटके गवर्नेंस पर आ जाता है।
दूसरा, स्वैच्छिक और मजबूर प्रवासन के बीच का अंतर कानूनी रूप से भले ही महत्वपूर्ण हो, लेकिन यह हमेशा प्रवासियों की असली प्रेरणाओं या अनुभवों को पूरी तरह नहीं दर्शाता।
ये हमें याद दिलाता है कि इंसानी कहानी कानून के डब्बों से बड़ी होती है।
तीसरा, वो तथ्य जो हमने शुरू में डिस्कस किया, ज्यादातर अंतर्राष्ट्रीय प्रवासी एक विकासशील देश से दूसरे विकासशील देश में जाते हैं, ना कि सिर्फ दक्षिण से उत्तर की ओर।
ये हमारी बनी बनाई सोच को तोड़ता है।
चौथा, डायस्पोरा समुदाय यानी विदेशों में बसे समुदाय सिर्फ प्रवासन का नतीजा नहीं है, वे भविष्य के प्रवासन पैटर्न और विकास को सक्रिय रूप से आकार देते हैं।
मतलब वो पैसिव नहीं है, एक्टिव रोल निभाते हैं।
बिल्कुल। और पांचवा, अंतर्राष्ट्रीय प्रवासन के प्रभावी शासन के लिए सिर्फ सीमाओं पर नियंत्रण काफी नहीं है, बल्कि सीमाओं के पार सहयोग की जरूरत है।
यानी दीवारें खड़ी करना हल नहीं है, मिलकर काम करना होगा।
एग्जैक्टली।
तो ये जो सारी बातें हमने की, जो समझ बनी, इसका हमारी रोजमर्रा की जिंदगी में या समाज के लिए क्या मतलब है? हम इसका क्या करें?
देखिए, एक जागरूक नागरिक के तौर पर ये जानकारी हमें मदद करती है। हम प्रवासन पर जो बहसें सुनते हैं, खबरें पढ़ते हैं, नेताओं के बयान सुनते हैं,
उन्हें बेहतर समझ सकते हैं।
हाँ, उन्हें ज्यादा क्रिटिकली देख सकते हैं, झूठी बातों, अफवाहों, पूर्वाग्रहों को पहचान सकते हैं।
और जो लोग नीतियां बनाते हैं उनके लिए,
उनके लिए तो ये किताबें एक तरह से गाइड का काम कर सकती हैं, सबूतों पर आधारित मानवीय और असरदार नीतियां बनाने के लिए, चाहे वो नए लोगों को समाज से जोड़ने के प्रोग्राम हो, या प्रवासन के सुरक्षित और कानूनी रास्ते बनाने हो, या फिर उन मूल कारणों पर काम करना हो जिनकी वजह से लोग पलायन करते हैं।
अपने आस पड़ोस में कम्युनिटी लेवल पर भी कुछ फर्क पड़ सकता है।
बिल्कुल, ये समझ हमें अपने समुदायों में प्रवासियों के प्रति ज्यादा हमदर्दी रखने, ज्यादा स्वागत करने वाला रवैया अपनाने में मदद कर सकती है। ये समझने में कि एकीकरण एक साझा जिम्मेदारी है,
और बिजनेस और एजुकेशन में,
वहाँ भी ग्लोबल टैलेंट को समझने में, एक डाइवर्स वर्कफोर्स के क्या फायदे हैं ये पहचानने में, स्कूलों कॉलेजों में अलग अलग बैकग्राउंड से आने वाले छात्रों की जरूरतें समझने में, यह सब जगह काम आता है।
आज की इस बातचीत से मेरे लिए सबसे बड़ा टेक अवे ये है कि अंतर्राष्ट्रीय प्रवासन जैसे जटिल मुद्दे पर आसान जवाबों से बचना चाहिए, जल्दबाजी में राय नहीं बनानी चाहिए। हमें सबूत देखने होंगे, अलग अलग नजरिए समझने होंगे, और सबसे जरूरी, इसका जो मानवीय पहलू है उसे कभी नहीं भूलना चाहिए। ये सिर्फ नंबरों का खेल नहीं है, ये इंसानों की कहानियां हैं।
और मेरे लिए ये विचार सबसे स्ट्राइकिंग रहा कि प्रवासन वैश्वीकरण का एक मतलब हिस्सा है जिसे अलग नहीं किया जा सकता। इसे रोकना न सिर्फ अमानवीय है बल्कि शायद नामुमकिन भी।
तो चुनौती इसे बेहतर ढंग से मैनेज करने की है।
हाँ, ताकि ये सबके लिए फायदेमंद हो सके, भेजने वाले देशों के लिए, पाने वाले देशों के लिए, और खुद प्रवासियों के लिए भी। इसमें सिर्फ चुनौतियां नहीं, अवसर भी हैं। खालिद कोसर की किताबें हमें यही नजरिया देती हैं।
शायद अब हमें ये भी सोचना चाहिए कि आगे चलकर जैसे जलवायु परिवर्तन बढ़ रहा है, वो प्रवासन के पैटर्न को कैसे बदलेगा, और क्या दुनिया उसके लिए तैयार है।
ये एक बहुत बड़ा सवाल है आने वाले वक्त के लिए।
मिलेंगे अगले अंक में एक और विश्व प्रसिद्ध व्यक्तित्व, एक और किताब, और एक ऐसे नए विचार के साथ जो हमारी दुनिया को आकार देता है। ये ऑडियो सारांश आपके लिए एकत्र फाउंडेशन द्वारा प्रस्तुत है।